السلام علیکم. یہ پارٹ 7 ہے ناول ڈارک فیس. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف مظہر کلیم ایم اے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7. بہرحال یہ سن لو کہ تمہیں ہر حالت میں اس بارے میں بتانا ہوگا, تنویر نے سخت لہجے میں کہا. اس کا مطلب ہے کہ میرا آئیڈیا درست ہے, تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہو, مائٹی نے کہا. تو تنویر کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی بے اختیار چونک پڑے. ان کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ مائٹی اس طرح ان کے بارے میں بات کرے گا. تم جو چاہے سمجھ لو, لیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو, تنویر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا. میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس کے تربیت یافتہ لوگ ہم گنڈوں کے بس کے نہیں ہوتے. اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ڈارک فیس کا ایک آدمی جگر ہے اور میرا تعلق جگر سے ہے. جگر نے تمہارے آنے سے قبل مجھے فون کر کے ایک عورت اور ایک مرد کا حلیہ بتایا اور ساتھ ہی ایک کار کا رجسٹریشن نمبر اور ماڈل مجھے بتایا کہ یہ ایک پورا گروپ ہے جن کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے. میں وہ کار تلاش کراؤں اور پھر اس گروپ کو ٹریس کر کے اسے اطلاع دوں. اس کے فوراً بعد تم تینوں کلب میں داخل ہوئے. میں اپنے آفس میں شارٹ سرکٹ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم نے کاؤنٹر گرل لوسی کو گردن سے پکڑ کر کاؤنٹر سے باہر کھینچا تو میں چونک پڑا. پھر میرے سامنے گیلری سے فائرنگ ہوئی, لیکن تم نے جس ماہرانہ نشانے بازی کا مظاہرہ کیا کہ سوراخ میں سے گولی دوسری طرف موجود آدمی کو ماری اور پھر یہی کام تمہارے ساتھی نے کیا, تو میں سمجھ گیا کہ تم تینوں تربیت یافتہ ہو اور لازمن تمہارا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے جس کو میں نے تلاش کرنا ہے. چنانچہ کنفرمیشن کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلا لیا اور یہاں تمہاری باتیں سن کر اور تمہارا انداز دیکھ کر میں کنفرم ہو گیا ہوں کہ واقعی تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے, مائٹی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا. یہ جگر ڈارک فیس کا کیا ہے, چیف ہے؟ تنویر نے کہا. نہیں, چیف تو لارڈ کہلاتا ہے اور دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے. کسی خصوصی فون پر وہ صرف احکامات دیتا ہے. جگر اس کا پورا گروپ صرف اس کے تابع ہیں اور بس, مائٹی نے جواب دیا. جس مرد اور عورت کے حلیے تمہیں بتائے گئے تھے, کیا وہ حلیے تم بتاؤ گے؟ صفدر نے کہا. ہاں, عورت سوئس نژاد تھی جبکہ مرد ایشیائی تھا, مائٹی نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو حلیے بتائے وہ عمران اور جولیا کے تھے کیونکہ وہ اصلی چہروں میں تھے. یہ جگر کہاں رہتا ہے؟ تنویر نے کہا. تم اس تک نہ پہنچ سکو گے, میں خود تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں, مائٹی نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا. اور اس کے ساتھ ہی انہیں چھت سے چٹ کی آواز سنائی دی تو تنویر, صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کی نظر چھت کی طرف اٹھی, لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا. سپاٹ اور سیدھی چھت تھی جس کے درمیان فانوس لٹک رہا تھا اور پھر ان کی گردنیں نیچے ہوئیں تو اسی لمحے مائٹی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کو اٹھتے دیکھ کر تنویر اور اس کے ساتھیوں نے بھی اٹھنا چاہا, لیکن دوسرے لمحے وہ یہ محسوس کر کے ششدہ رہ گئے کہ ان کے جسم حرکت سے معذور ہو چکے ہیں. وہ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہ گئے تھے. اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی, لیکن اس بار وہ سر بھی اوپر نہ اٹھا سکے تھے. اور جس تیزی سے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اسی طرح ان کے ذہن بھی بند ہو گئے تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر سی تن گئی تھی. جگر درمیانے قد اور چھریرے بدن کا آدمی تھا. اس کے سر سے بال छजरे से थे। इसकी नाक की नोक थोड़ी कटी हुई थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा अजीब सा लगता था। अलबत्ता इसकी आंखों में जहानत की तेज चमक थी। वो डार्क फेस के एक सेक्शन का इंचार्ज था और डार्क फेस की तरफ से इन्हें इतने भारी मुआवजे मिलते रहते थे कि वो इन मुआवजों की बिना पर लॉज से भी शानदार अंदाज में जिंदगी बसर करते थे। वैसे वो एक छोटे से शूटिंग क्लब का मालिक था। इस वक्त भी वो अपने क्लब के ऑफिस में बैठा हुआ था कि फोन की घंटी बज उठी, तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जिगर बोल रहा हूँ, जिगर ने कहा। माइटी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से माइटी की आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, क्या हुआ मिशन का, जिगर ने चौंक कर पूछा। कामयाबी, दूसरी तरफ से कहा गया तो जिगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वेरी गुड माइटी, तुम वाकई काम करने वाले आदमी हो, क्या हुआ है तफसील बताओ, जिगर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। इस ग्रुप में 4 मर्द और एक औरत शामिल है। जब तुमने मुझे इस मिशन के बारे में बताया तो 3 आदमी क्लब में दाखिल हुए और उन्होंने इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर वहाँ कार्रवाई कर दी, माइटी ने कहा। किस कैसी कार्रवाई, जिगर ने चौंक कर पूछा। तो जवाब में माइटी ने मार्शल और इसके साथियों की तमाम कार्रवाई से लेकर इनके बेहसो हरकत होने और फिर बेहोश होने तक की पूरी तफसील बता दी। क्या तुमने इन्हें हलाक कर दिया है, जिगर ने कहा। मैंने इनके मेकअप वॉश करने की कोशिश की लेकिन मेकअप वॉश नहीं हुए तो मैं परेशान हो गया। बहरहाल मैंने इन्हें अपने एक पॉइंट पर भिजवा दिया और वहाँ इन्हें जंजीरों से जकड़ दिया गया। वैसे वो अभी तक बेहसो हरकत भी हैं और बेहोश भी। इसके बाद मैंने कार को ट्रेस कराया। ये कार रॉयल कॉलोनी की एक कोठी में खड़ी नजर आ गई। हमने मशीनों के जरिए इस कोठी को चेक किया तो इस कोठी के अंदर एक एशियाई मर्द और एक स्विस नजाद औरत मौजूद थी। इनके हुलिये वही थे जो तुमने बताए थे। हमने मशीन के जरिए इनकी बातें सुनी ताकि पता चल सके कि पूरा ग्रुप कितना है और कहाँ है, क्योंकि तुमने कहा था कि ग्रुप को हलाक करना है, अलेदा अलेदा नहीं। फिर इनकी बातों से मालूम हुआ कि इनके 3 साथी किंग क्लब गए हुए हैं और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई और वो सोच रहे थे कि मजीद कुछ देर इनका इंतजार करने के बाद वो खुद किंग क्लब जाएं। चुनांचा मैं समझ गया कि किंग क्लब में आने वाले पहले 3 आदमी भी इनके ग्रुप के हैं, लेकिन मैंने इन्हें फौरी तौर पर हलाक करने की बजाय इन पर गैस फायर करा दी। इस तरह ये दोनों बेहोश हो गए तो मैंने इन्हें भी वहाँ से उठवाकर अपने खुसूसी पॉइंट पर भिजवाकर इनको भी जंजीरों में जकड़वा दिया है, माइटी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये सब अभी जिंदा हैं, जिगर ने कहा। हाँ, मैंने फोन इसीलिए किया है कि अगर तुम कहो तो मैं पॉइंट पर फोन करके वहाँ अपने आदमियों को हुक्म दे दूं कि वो इन्हें गोलियां मार दे, या तुम खुद वहाँ जाकर इनकी चेकिंग करोगे कि क्या वाकई ये तुम्हारा मतलूबा ग्रुप है या नहीं, माइटी ने कहा। तो जिगर चौंक पड़ा। ओ हाँ, तुमने पहले बताया है कि पहले 3 आदमियों के मेकअप वॉश नहीं हो सके, इसका मतलब है कि वो असल चेहरों में हैं। क्या वो एशियाई हैं, जिगर ने पूछा। नहीं, वो मकामी हैं, माइटी ने जवाब दिया। मकामी, ओह, फिर तो वाकई चेकिंग की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम इन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएं और वो असल हलाक ना हो। ऐसी सूरत में तो लॉर्ड हम सबके डेथ वारंट जारी कर देगा, जिगर ने कहा। तो फिर मेरे पॉइंट पर जाकर पूरी तसल्ली कर लो, अगर वो असल ग्रुप होगा तो अपने सामने इन्हें हलाक करा देना और अगर वो असल ना हो तब भी इन्हें हलाक करा देना। फिर मुझे फोन करके बता देना ताकि मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक काम कर सकूं। मैती ने कहा। कहाँ है तुम्हारा पॉइंट और वहाँ कौन इंचार्ज है? जिगर ने कहा। मेरा पॉइंट बर्ज एस्ट कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में है और वहाँ मेरा खास आदमी ट्रैग है। मैं इसे फोन कर देता हूँ, वो तुमसे मुकम्मल तावुन करेगा, मैती ने कहा। ओके ठीक है, इसे फोन कर दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इसकी कार खासी तेज रफ्तारी से बर्ज एस्ट कॉलोनी की तरफ बड़ी चली जा रही थी। ये उम्रा की कॉलोनी थी और वहाँ वसी अरीस रकबे पर इंतहाई शानदार कोठियाँ थी जहाँ रहने वाले ग्रेटलैंड के इमरा तबके से ताल्लुक रखते थे। तकरीबन एक घंटे की ड्राइविंग के बाद वो बर्ज एस्ट कॉलोनी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक आलीशान कोठी के जहाजी साइज के फाटक के सामने पहुंच चुका था। नंबर वही था जो मैती ने बताया था, अलबत्ता सुतून पर प्लेट किसी डॉक्टर आर्नल्ड के नाम की लगी हुई थी। जिगर ने कार रोकी और फिर नीचे उतर कर इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? दो फोन से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जिगर हूँ, जिगर ने कहा। ओ अच्छा, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और इसके साथ ही कटक की आवाज सुनाई दी और जिगर समझ गया कि डोर फोन ऑफ कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी बाहर आ गया। तुम्हारा नाम ट्रैग है? जिगर ने पूछा। जी हाँ, ट्रैग ने जवाब दिया। मैती ने तुम्हें फोन किया होगा? जिगर ने कहा। यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आए, इस बार ट्रैग ने मोदबाना लहजे में कहा और वापस मुड़कर अंदर चला गया, जबकि जिगर दोबारा अपनी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुला और जिगर कार अंदर ले गया। वसी और इस पोर्च में एक लिए एक नए मॉडल की कार पहले से मौजूद थी। जिगर ने अपनी कार भी इसके साथ ले जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आया, जबकि इस दौरान ट्रैक फाटक बंद करके वापस इस तरफ चला आ रहा था। वो सब कहाँ है? जिगर ने पूछा। वो सब बेहोश और जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ट्रैक ने मौदवाना लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक वसी और इस तय खाने में दाखिल हो रहे थे जहाँ सामने दीवार के साथ फौलादी कुंडों में जंजीरें मंसरिक थी और चार मर्द और एक औरत इन जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन इन सब की गर्दनें ढलकी हुई थीं और इनके जिस्म बेजान हालत में नीचे की तरफ ढलके हुए थे। इनके मेकअप चेक किए हैं? जिगर ने सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस सर, लेकिन इनमें से कोई भी मेकअप में नहीं है, ट्रैक ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो ये हमारा मतलूबा ग्रुप नहीं हो सकता। अलबत्ता ये एशियाई आदमी हमारा मतलूबा आदमी हो सकता है। तुम्हें बताया गया है कि इन्हें कैसे होश में लाया जा सकता है? जिगर ने कहा। यस सर, ट्रैक ने जवाब दिया। तुम इन्हें होश में ले आओ, जिगर ने कहा। इन सबको होश में लाना है या इनमें से किसी एक को? ट्रैक ने पूछा। सबको होश में ले आओ, लेकिन पहले अच्छी तरह चेक कर लो कि ये दुरुस्त तौर पर जंजीरों में जकड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि ये खतरनाक सेक्रेट एजेंट है, जिगर ने कहा। ये उंगली भी नहीं हिला सकते जनाब, आप बेफिक्र रहें, ट्रैक ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ओके फिर इन्हें होश में ले आओ, जिगर ने कहा। तो ट्रैक एक अलमारी की तरफ बढ़ गया, इसने अलमारी खोलकर इसमें से एक डब्बा निकाला और फिर इसमें मौजूद एक बड़ी सिरिंज निकालकर इसने डब्बा वापस अलमारी में रखा और सुर्ख रंग के महलूल से सिरिंज भरा हुआ था, सुई पर कैप चढ़ा हुआ था। ट्रैक ने एक आदमी के करीब आकर सुई के ऊपर से कैप हटाई और फिर सुई इसने इस आदमी के बाजू में उतार दी। تھوڑا سا محلول انجیکٹ کرنے کے بعد اس نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا محلول باقی تینوں مردوں اور عورت کے بازو میں انجیکٹ کیا اور پھر خالی سرنج ایک ڈبے میں ڈال کر وہ مڑا اور جگر کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. عمران کی آنکھیں کھلی تو اس نے بیکچا ادھر ادھر دیکھا تو اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے. اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے تہخانے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے. اس کی ایک سائڈ پر تنویر صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود تھے. وہ تینوں ہوش میں آنے کے پروسیس سے گزر رہے تھے جبکہ اس کی دوسری سائڈ پر جولیا بھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس میں بھی ہوش میں آنے کی کیفیت نمایاں تھی. سامنے ایک کرسی پر ایک درمیانے قد اور چھریلے بدن کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کا قد لمبا اور جسم ورزشی تھا. عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا تھا. وہ جولیا کے ساتھ جیفری سے ملاقات کر کے واپس کوٹھی میں آ گیا تھا. چونکہ تنویر صفدر اور کیپٹن شکیل ان کے سامنے میک اپ کر کے کار پر کنگ کلب گئے تھے اس لیے یہاں انہیں دیکھتے ہی عمران پہچان گیا تھا. جیفری سے ملاقات بے سود رہی تھی کیونکہ جیفری کو ڈارک فیس کے بارے میں معلومات حاصل ہی نہ تھی. البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. عمران واپس آ گیا تھا لیکن پھر جب کافی دیر تک تنویر صفدر اور کیپٹن شکیل کی واپسی نہ ہوئی تو عمران نے کنگ کلب جانے کا پروگرام بنایا. لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اس پر عمل کرتا اچانک اس کے کانوں سے نامایوسی بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا تھا اور اب ہوش آنے پر وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے. ان کی زنجیریں کافی حد تک ڈھیلی پڑ گئی تھی. تم سب آپس میں ساتھی ہو؟ سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے درمیانے قد کے آدمی نے کہا. پہلے تم اپنا مہذب افراد کی طرح تعارف کراؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم کس درجے اونچی شخصیت کے سامنے موجود ہیں. عمران نے کہا تو وہ آدمی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا. تم وہ عمران ہو جس کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں؟ اس آدمی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. انہی دھوموں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت تمہارے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوں. عمران نے ہنستے ہوئے کہا. اس کا مطلب ہے تم نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ تم عمران ہو. باقی شیعہ ایجنٹ تمہارا اور اس عورت کا حلیہ مجھے بتایا گیا تھا. البتہ ان تینوں کے میک واش نہیں ہو رہے اس لیے تمہیں ہوش میں لایا گیا ہے ورنہ ہم اتنا تکلف کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. اس آدمی نے کہا اور عمران اس کے منہ سے حلیوں کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا تھا. کس نے ہمارے حلیے بتائے تھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. نہ صرف حلیے بلکہ تمہاری کار کا نمبر بھی بتایا گیا تھا اور تو ہمارے آدمیوں نے اس کار کو تلاش کر لیا تو تم بھی سامنے آ گئے. سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا. تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا؟ عمران نے کہا. میرا نام جگر ہے. ویسے تمہاری تلاش اور تمہیں یہاں لے آنے کا کارنامہ کنگ کلب کے مائتی کا ہے اور اس وقت تم اس کے پوائنٹ پر ہو. البتہ تمہارے یہ تینوں ساتھی براہ راست کنگ کلب میں مائتی کے پاس پہنچ گئے اور وہ ان کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ یہ سیکرٹ ایجنٹ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے میک اپ واش نہیں ہو سکے تھے. جگر نے کہا. کیا تم اس مائتی کے اسسٹنٹ ہو؟ عمران نے پوچھا. نہیں میرا علیحدہ کلب ہے اور مائتی کا علیحدہ. البتہ تمہارے بارے میں کام میں نے مائتی کو دیا تھا کیونکہ میں خود بھی تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا. और ना ही अपने साथियों को सामने लाना चाहता था, जिगर ने कहा। क्यों? इमरान ने बेसाख्ता होकर कहा। अब तुमने बहरहाल मर ही जाना है तो फिर तुम्हें सारी बात क्यों ना बता दी जाए। डार्क फेस के चीफ लॉर्ड ने मुझे फोन पर तुम्हारे हुलिये और कार का नंबर बता दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे ग्रुप को सामने आने से मना कर दिया था। गो इनका ये हुक्म था कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ट्रेस करके फौरी तौर पर बिला ताकत हलाक कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारे साथियों ने मेकअप वॉश न होने पर बिना पर हम उलझन में पड़ गए। अब बहरहाल ये बात तय हो गई है कि ये तीनों तुम्हारे ही साथी हैं, इसलिए अब तुम्हें हलाक कर दिया जाना चाहिए, जिगर ने कहा, जबकि इस दौरान इमरान अपनी उंगलियों की मदद से कड़ों को चेक करता रहा था, लेकिन बावजूद शदीद कोशिश के वो कड़ों में कोई बटन ट्रेस ना कर सका था। हालांकि ऐसा होना लाजमी था क्योंकि कड़े खुले बगैर तो इनकी कलाइयां इन कड़ों में जकड़ी ना जा सकती थी, लेकिन ये बटन किसी सूरत भी ट्रेस ना हो रहे थे, और जब तक ये बटन ट्रेस ना हो तब तक वो इन कड़ों से आजादी हासिल ना कर सकते थे। बहरहाल वो मुसलसल अपनी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अभी तक वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका था, और वो ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि जिगर जैसे आदमी अचानक बातें करते करते फायर भी खोल सकते हैं, और वो इस वक्त जिस पोजीशन में थे, अगर जिगर इन पर फायर खोल देता तो वो कोई जद्दोजहद भी करने के काबिल न थे। क्या तुम्हारा लॉर्ड से राब्ता है? इमरान ने इसका ध्यान बटाने के लिए कहा। लॉर्ड का मुझसे राब्ता है, मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं है, और हाँ अब बातचीत काफी हो गई है, अब तुम्हें हलाक हो जाना चाहिए, जिगर ने कहा, और इसके साथ ही वो अपने साथ खड़े आदमी से मुखातिब हो गया। ट्रेस, जिगर ने कहा, यस सर, इस आदमी ने चौंक कर कहा। मशीनी पिस्टल ले आओ मैगजीन समेत, जिगर ने कहा। यस सर, ट्रेस ने कहा, और इसके साथ ही इसने जेब से एक मशीनी पिस्टल निकाल कर जिगर की तरफ बढ़ा दी। इमरान के होंठ भीग गए थे और इसके साथ ही बेबस खड़े थे, और जिगर ने तो सिर्फ मशीनी पिस्टल का ट्रिगर ही दबाना था। जिगर ने मशीनी पिस्टल को बाकायदा चेक किया और इसके साथ ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर यकलक सख्ती और सफाकी के तासरात उभर आए, लेकिन इसके पहले कि वो ट्रिगर दबाता, अचानक साइड से जंजीरों की कड़कड़ाहट की आवाज गूंजी तो ट्रेस और जिगर दोनों की गर्दनें इधर घूम गईं, और फिर से पहले के वो समलते सबसे आखिर में मौजूद जूलिया हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ती हुई आई, और वो दोनों चीखते हुए कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरे। जूलिया ने पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक इस ट्रेस के सीने पर इस अंदाज में मारी कि वो चीखता हुआ साथ खड़े जिगर से टकराया, और साथ ही वो कुर्सी से भी टकराया, और इस तरह वो दोनों कुर्सी समेत चीखते हुए नीचे जा गिरे, जबकि जूलिया ने फ्लाइंग किक मारकर कलाबाजी खाई, और दूसरे लम्हे वो जैसे ही सीढ़ी खड़ी हुई इसके हाथ में वो मशीनी पिस्टल मौजूद था जो ट्रेगर ने जिगर को दिया था, और जो अचानक धक्का लगने से इसके हाथ से निकलकर सामने जा गिरा था। इसके साथ ही रेट रेट की आवाजों के साथ ही ट्रेस और जिगर दोनों के हलक से बेख्तियार चीखें निकली, और वो दोनों उठने की कोशिश करते हुए गोलियां खाकर दोबारा फर्श पर गिरे और जबा होती हुई बकरियों की तरह फड़कने लगे। ट्रेस तो चलने में फड़कने के बाद साख्त हो गया, जबकि जिगर जिसने के एक कूले में गोलियां लगी थी कुछ देर तक तड़पता रहा। इसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया, जबकि जूलिया इस दौरान मशीनी पिस्तौल उठाए दौड़ती हुई दरवाजा क्रॉस करके बाहर चली गई थी। इमरान वैसे ही होंठ भीचे खड़ा था। इमरान साहब, जूलिया किस तरह आजाद हो गई है? अचानक सफदर की आवाज सुनाई दी। इसे आज तक तनवीर पाबंद नहीं कर सका, ये बेचारा जिगर कैसे कर लेता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबके सस्ते हुए चेहरों पर यकलक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आ गई। यहाँ इस कोठी में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है, जूलिया ने वापस आकर कहा। इस ट्रैक की जेबों की तलाशी लो, मेरा ख्याल है कि ये कड़े रिमोट कंट्रोल हैं, इमरान ने कहा। तो जूलिया तेजी से ट्रैक की तरफ बढ़ी और इसने इसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो वाकई एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला इसकी जेब से बराबर आमद करने में कामयाब हो गई। जल्दी करो, इस जिगर को फर्स्ट एड देनी है वरना ये हलाक हो गया तो हम मुकम्मल अंधेरे में रह जाएंगे, इमरान ने कहा। इसलिए तो मैंने इसके कूले पर फायर किया है, जूलिया ने रिमोट कंट्रोल का रुख इमरान की तरफ करते हुए इसका बटन प्रेस किया। इसके साथ ही जंजीरें खुलकर नीचे जा गिरी। इमरान के हाथ आजाद हो चुके थे। इमरान का ख्याल दुरुस्त था, कड़े वाकई रिमोट कंट्रोल थे इसलिए वो इनके बटन प्रेस ना कर सका था। तुम बाकी साथियों को आजादी दिलाओ, मैं मेडिकल बॉक्स तलाश कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तो जूलिया ने बारी बारी सब साथियों के हाथ कड़ों से आजाद करा दिए। मिस जूलिया, आपने कैसे इन कड़ों से आजादी हासिल की, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भी पहले उंगलियां घुमाकर कड़ों के बटन तलाश करती रही लेकिन बटन ना मिले तो मेरे हाथों को सुकेड़ कर इन कड़ों से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने चूंकि इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की हुई है इसलिए जल्दी ही मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। मुझे कामयाबी इस वक्त मिली जब ये जिगर इमरान को गोली मारने ही वाला था, इसलिए मुझे फौरी तौर पर एक्शन में आना पड़ा, जूलिया ने जवाब दिया। इसी लम्हे इमरान एक मेडिकल बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। यहाँ एक कमरे में असला मौजूद है, तुम लोग बाहर का ख्याल रखो, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। कैप्टन शकील इसकी बैंडेज करने में मेरी मदद करेगा, इमरान ने कहा। तो सिवाय कैप्टन शकील के बाकी सब जूलिया समेत इस तहखाने से बाहर चले गए। इमरान ने कैप्टन शकील की मदद से जिगर की पैंट उतार कर इसके कूले में मौजूद गोली बाहर निकाली और फिर बैंडेज कर दी। खून काफी निकल जाने की वजह से जिगर का रंग जर्द पड़ रहा था और इसकी सांस भी हमवार अंदाज में ना चल रही थी, इसलिए इमरान ने मेडिकल बॉक्स में मौजूद ताकत के दो मखसूस इंजेक्शन इसे लगाए और फिर पैंट दोबारा पहनाकर इसने इसकी बेल्ट बांध दी। कैप्टन शकील, कहीं से रस्सी तलाश कर लाओ, इसे कुर्सी पर बिठाकर बांधना पड़ेगा, अगर इसे जंजीरों में जकड़ कर खड़ा कर दिया गया तो खून दोबारा बहना शुरू हो जाएगा और फिर इसका बचना नामुमकिन हो जाएगा, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, मैं ले आता हूँ रस्सी, कैप्टन शकील ने कहा और तेज तेज कदम उठाता तहखाने से बाहर चला गया। तो इमरान ने जिगर को उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील वापस आया तो इसके हाथ में रस्सी का एक बंडल मौजूद था और फिर इमरान ने कैप्टन शकील की मदद से इसे कुर्सी के साथ रस्सी से जकड़ दिया। तुम दूसरी कुर्सी लेकर इसके अकब में बैठ जाओ, ये तरबियत याफ्ता आदमी है, ऐसा ना हो कि ये रस्सी खोल ले, इमरान ने कहा। खोल भी ले तब भी ये हरकत तो नहीं कर सकता, कैप्टन शकील ने कहा। ओ हाँ ठीक है, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़कर इसने जिगर की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जिगर के जिस्म में हरकत के तासरात नमूदार होने शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ हटाए और सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन शकील भी इसके साथ ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। चंद लम्हों बाद जिगर ने कराते हुए आंखें खोली और होश में आते ही इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो पूरी तरह कसमसा भी ना सका था। तुम्हारे कूल्हे पर जख्म था, इसलिए मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने की बजाय कुर्सी पर बिठाया है और रस्सी से इसलिए जकड़ा है कि तुम हरकत करके अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की कैसे आजाद हो गई? जिगर ने हैरत भरे अंदाज में दाएं बाएं देखते हुए कहा। लड़के आजाद होना चाहे तो इन्हें कोई जंजीर कैद नहीं रख सकती, इसलिए इस बात की फिक्र छोड़ो कि वो कैसे आजाद हुई है और कैसे नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काश मैं खुद चेक कर लेता, मैंने ट्रैक से पूछा भी था, इसने कहा कि इन जंजीरों को कोई नहीं खोल सकता। जिगर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ये नॉवेल डार्क फेस का बकिया हिस्सा पार्ट 8 में समाप्त फरमाएं।